Gopi jana vallabha girivara dhari Yashodanandana braja janaranjana Yashodanandana braja janaranjana Yamuna tira vanachari Yamuna tira vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Mishrapada Paramahansa Pararadhika Chari Hashtotar Shastri Srimad Divine Grace Abhaja Narvind Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya BBT Founder Acharya Save the Whole World Srila Prabhupada Ki Jai Jaya Mishrapada Paramahansa Pararadhika Chari Hashtotar Shastri Srimad Bhakti Siddhanta Sagusha Prabhupada Goswami Maharaj Ki Jai Nama Acharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasadhi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Jagannath Dwarka Puri Dham Ki Jai Mathura Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Yamuna Mai Ki Jai Vrindadevi Tulasi Maharani Ki Jai Shri Shri Radha Radhika Raman Bhagwan Ki Jai Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Jagannath Baladeva Subhadra Maharani Ki Jai Shri Gaurnitai Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Granthraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Srila Prabhupada Translated Book Distribution Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol All glories to Madhavar Hare Krishna, all glories to Madhavar Hare Krishna, all glories to Madhavar Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udhirayet Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Ruttama Shloke Bhakti Rabhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Srimad Bhagavatam Skanda 10 Adhyay 1 Shlok Sankhya 25 Aise to His Grace Madhu Mangal Prabhu ko aana tha Lekin Abhi mere ko 7:45 ke Sarva ke Damodar Prabhu ne bola ki wo bhul gaye hain Madhu Mangal Prabhu ki aaj unka class tha aur kal sampark karna to maine bola jaldi bata diya pichli bari 8:05 pe bataya tha mere ko जब सुदामा प्रभु नहीं आए थे तो समाओं में याद करते भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज, क्योंकि ऐसी स्थिति में महाराज हमारे सेवियर हुआ करते थे हमेशा। जब भी कभी कुछ ऐसा केस होता था हम महाराज को बोलते थे आप क्लास दे दीजिए, और महाराज हमसे रेडी होते थे। लेकिन अभी क्योंकि महाराज इंडोनेशिया के अंदर हैं तो अभी जितना भी आपको आधा पौना घंटा सहन करना पड़ेगा, तो जितना मेरे को 10 मिनट समय मिला उसमें मैं कुछ प्रिपरेशन करके आया। ये श्लोक बहुत अच्छा है और प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसके अंदर बहुत बड़ा और बहुत ही व्यावहारिक है हम भक्तों के लिए। ओम नमो विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। माता जी सम्मोहितं जगत् कार्यार्थे संभविष्यते विष्णुर्माया भगवते यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांशेन शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णु माया भगवान विष्णु की शक्ति, भगवती भगवान के ही समकक्ष, अतएव भगवती नाम से जानी जाने वाली यया जिससे सम्मोहितम मोहित जगत सारे जगत भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों आदिष्टा आदेश पाकर प्रभुणा स्वामी के द्वारा अंशेन अपने विभिन्न शक्तिशाली कारकों के साथ कार्यार्थे पूरा काम करने के लिए संभविष्यति जन्म लेगी अनुवाद। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होंगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होंगी। तात्पर्य, श्वेताश्चर उपनिषद 6.8 में वेदों में कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, कि भगवान की शक्तियां विविध नामों से पुकारी जाती हैं, यथा योग माया तथा महामाया, किंतु अंततो गत्वा भगवान की शक्ति एक है। ठीक उसी तरह जिस तरह की विद्युत शक्ति एक है, यद्यपि वह शीतल करने अथवा गर्म करने दोनों का ही कार्य करती है। भगवान की शक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगतों में कार्य करती है। आध्यात्मिक जगत में यह योग माया के रूप में कार्य करती है, तो भौतिक जगत में वही महामाया के रूप में कार्य करती है। उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति हीटर तथा कूलर दोनों में काम करती है, भौतिक जगत में यह शक्ति महामाया के रूप में कार्य करती हुई बद्ध जीवों को भक्ति से अधिकाधिक वंचित कराने वाली है। कहा गया है, यया सम्मोहितम जीवम आत्मानम त्रिगुणात्मकम। बद्ध जीव भौतिक जगत में अपने को तीनों गुणों त्रिगुण की उपज मानता है। यह देहात्म बुद्धि है। हर व्यक्ति भौतिक शक्ति के तीन गुणों से अपने को संबंध करने के ही कारण अपने को शरीर मानता है। कोई अपने को ब्राह्मण, तो कोई अपने को क्षत्रिय मानता है, तो कोई वैश्य और कोई शूद्र। वास्तव में न तो कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य और शूद्र, वह तो भगवान का अंश है, ममैव अंशः। किंतु भौतिक शक्ति महामाया से प्रच्छन्न होने के कारण वह भिन्न भिन्न ढंगों से अपनी पहचान करता है। किंतु जब बद्ध जीव मुक्त हो जाता है, तो वह अपने को कृष्ण का नित्य दास मानता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, तो वही शक्ति योग माया उसे शुद्ध बनने और अपनी शक्ति भगवान की सेवा में लगाने में अधिकाधिक सहायक बनती है। चाहे जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त, भगवान प्रत्येक अवस्था में सर्वोपरि है। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। भगवान के ही आदेश से महामाया बद्ध जीव पर अपना प्रभाव दिखलाती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने को उन कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। गीता 3:27। बद्ध जीव में किसी को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं, किंतु मनुष्य मोहग्रस्त होने तथा महामाया के वशीभूत होने से मूर्खतावश अपने को स्वतंत्र मान बैठता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। किंतु जब भक्ति करने के कारण बद्ध जीव मुक्त बनता है, तो उसे विभिन्न रसों में यथा दास्य रस, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य में भगवान के साथ अपने संबंध का आस्वादन कराने का अधिकाधिक अवसर प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान की शक्ति विष्णु माया के दो स्वरूप हैं, आवरणिका तथा उन्मुख। जब भगवान अवतीर्ण हुए, तो उनकी शक्ति उनके साथ आई और उसने अनेक प्रकार से कार्य किए। उसने यशोदा, देवकी तथा भगवान के अन्य घनिष्ठ संबंधों के साथ, संबंधियों के साथ योग माया के रूप में कार्य किया। किंतु कंस, शाल्व एवं अन्य असुरों के साथ उन्होंने भिन्न रूप से कार्य किया। भगवान कृष्ण के आदेश से उनकी शक्ति योग माया उनके साथ आई और उसने देश तथा काल के अनुसार विविध कार्यकला प्रदर्शित किए। कार्यार्थे संभविष्यति। योग माया ने भगवान के द्वारा इच्छित विविध प्रयोजनों के लिए भिन्न भिन्न प्रकारों से कार्य किया। जैसा कि भगवद्गीता में पुष्टि हुई है 9:13 में, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिताः। भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत महात्मा जन योग माया द्वारा निर्देशित होते हैं, जबकि भक्ति से रहित दुरात्मा जन महामाया द्वारा निर्देशित होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padana Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamsya He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpata Rubhyascha Kripa Sindhu Bhya Evacha Patita Nama Pavane Bhyo Vaishnave Bhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mate Bhakti Vedanta, Swamin Itinamine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pracharine, Niravisesha Shunyavadi, Paschatya Deshatarine. Hare Krishna. Vishnur Maya Bhagavati Yaya Sammohitam Jagat Adishta Prabhunanchena Karyarthe Sambhavishyati. To prasang is prakar se hai ki prithvi par bahut sare asuri raja badh chuke hain aur isiliye prithvi unke bojh se bojhil hai, unke bhar se bojhil hai aur vah dharti mata ek gaay ka roop dharan karke Brahma ji ke paas jati hain aur unse prarthana karti hain. तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के शिव जी को लेकर के शीर सागर के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं. गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जैसा कि पीछे आए थे प्रभु जी शचीपति प्रभु आई थिंक वे बता रहे थे कि इवन महाविष्णु भी सबको लेके कहां जाते हैं वो लोग वृंदावन में लेके जाते हैं. वो गर्ग संहिता के अंदर लेकिन भागवत के अनुसार सब शीर सागर के तट पे जाते हैं और ब्रह्मा जी वे समाधिस्थ होते हैं और फिर भगवान का संदेश सभी देवताओं को रिले करते हैं. केवल उन्हीं को सुनाई पड़ता है वह संदेश और वह सब देवताओं को बताते हैं और कहते हैं कि आप मेरे द्वारा सुनिए भगवान के संदेश को, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान से पूर्णतया कनेक्टेड हैं तो इसलिए वे भगवान के संदेश को सुन पाते हैं और वे सभी देवताओं को यहाँ दोहरा रहे हैं. तो श्लोक संख्या 22 से ब्रह्मा जी भगवान के संदेश को बता रहे हैं. उसमें बताते हैं कि भगवान को यह संकट पहले से ही पता था और इसीलिए भगवान जो हैं पृथ्वी का भार कम करने के लिए अभी अवतरित होंगे और आप सब देवता क्या कीजिए, यदुकुल के अंदर उनके पुत्र पौत्र इत्यादि के रूप में अवतार लीजिए. और बोला कि भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में स्वयं प्रकट होंगे, अतः देवताओं को सारी की सारी स्त्रियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए. बोलते हैं कि ना केवल जो देवता हैं बल्कि जितनी देवियां हैं वे सब भी जो हैं प्रकट हों धरती के ऊपर. फिर पिछले श्लोक के अंदर परसों जो इसके रूप सनातन प्रभु ने बहुत अच्छा व्याख्या किया था बलराम तत्व और नित्यानंद प्रभु के ऊपर कि भगवान के जो अंश हैं आदि संकर्षण अनंत वे जो भौतिक जगत में सारे अवतारों के उद्गम है वे बलदेव के रूप में उनकी लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए प्रकट होंगे. तो कृष्ण भगवान सेव्य भगवान हैं, बलराम जी सेवक भगवान हैं, तो वे प्रकट होंगे. और आप ब्रह्मा जी आज के संदेश में बता रहे हैं कि कृष्ण प्रकट होंगे, बलराम प्रकट होंगे और साथ में कौन प्रकट होगा, योग माया उनकी. तो विष्णु और माया भगवती कि भगवान विष्णु की ही माया उनकी शक्ति प्रकट होगी और वह शक्ति क्या है, भगवती है. यानी भगवान प्लूरल में है, उसका स्त्रीलिंग में क्या बोला जाएगा, भगवती. तो ये एक पहला विषय जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वह लगभग लगभग भगवान के ही समान क्या है, शक्तिशाली है. शक्तिर शक्तिर मतयोर अभिन्नम, कि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है. तो यह जो भगवान विष्णु की माया है यह भगवान विष्णु के ही समान शक्तिशाली है, लगभग उनके समान शक्तिशाली है. और कैसे शक्तिशाली हैं, क्या करती हैं वे, यया सम्मोहितम जगत. वो इसीलिए शक्ति विष्णु के समान है क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों को ही वो मोहित करती हैं, दोनों में कार्य करती हैं और दोनों को सम्मोहित करती है, मोहित करती हैं. यया सम्मोहितम जगत और आदिष्टा प्रभुणांशेन, और अपने प्रभु उनके आदेश को पा करके उनके आदेश, क्योंकि भगवान की शक्ति है तो हालांकि भगवान के समान हो लेकिन भगवान से सुपीरियर नहीं है, है ना। तो वे भगवान के आदेश को प्राप्त करके वो क्या कर रही है, अंशेन अपने सभी शक्तियों के साथ, अभी अपनी सभी अंशों के साथ, अपने सभी कारकों के साथ क्या करती हैं, वे प्रकट होती हैं भगवान के ही साथ। किस लिए? कार्यार्थे सम भविष्यति, कि भगवान के अनेक अनेक जो कार्य हैं उनको संपन्न करने के लिए वे प्रकट होती हैं। तो ये इसका संक्षेप में अर्थ है, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति भगवान के समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ प्रकट होंगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहित करने वाली है। वह अपने स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। तो हम यही चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि ये योग माया और महामाया है क्या, भगवान की शक्ति जो है, और दूसरा किस प्रकार ये क्या है और किस प्रकार से कार्य करती हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है, और महामाया कैसे बद्ध जीवों पर एक्ट करती है, योग माया कैसे आध्यात्मिक जीवों पर, आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक जीवों पर एक्ट करती है, और कैसे एक साधक भक्त जो है अपने आप को महामाया से ट्रांसफर करके योग माया में ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के अंदर कह रहे हैं कि भगवान की वैसे देखा जाए तो एक ही शक्ति है जो कि अनेक अनेक नाम से बोली जाती है। ऑफकोर्स परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, श्वेताशुपनिषद में श्लोक आता है, नतस्य कार्यम करणम च विद्यते नतस्तमश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, कि भगवान के समान कोई नहीं है। नतस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान के पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि एक बारी कई साल पहले एक जर्मन व्यक्ति भारत में आया था भारत के कल्चर को रिसर्च करने के लिए। जय श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलि सुभद्रा महारानी की जय। तो कल्चर के रिसर्च करते हुए वे भारत के जितने, अब उसे सुना यहाँ तो अनेक भगवान है कि नहीं, कितने वैसे देखा जाए कितने देवी देवता या भगवान बोले जाते हैं भारत में, 33 करोड़। तो लोग सब बहुत बिविल्डर होते हैं कि इतने सारे भगवान है, जितनी जनसंख्या नहीं उससे ज्यादा भगवान है, कहने का अर्थ है। तो वो भारत के कल्चर को रिसर्च करने के लिए आया तो सब मंदिरों में गया, गणेश जी के, दुर्गा देवी के, शिव जी के, इत्यादि इत्यादि जितने अनेक मंदिर थे सब जाकर गया। अब बड़ा बहुत बड़ा थीसिस लिख रहा था वो हर एक के ऊपर। तो थीसिस के निष्कर्ष में बोला उसने, कंक्लूजन क्या था उसका, कि यदि कोई भगवान हो सकता है इनमें से तो वो कौन हो सकता है, कृष्ण हो सकता है। उसे बोला, भाई ऐसा क्यों आप कंक्लूजन कह रहे हो? बोला, देखो बाकी जितने मंदिर में गया, शिव जी के पास गया तो त्रिशूल रखे हुए हैं, या किसी कोई समाधि में बैठा है, हनुमान जी पतवर उठा के घूम रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वे कार्य कर रहे हैं, या अपनी रक्षा के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र रखे हैं। राम जी के पास भी गया तो धनुष बाण है, है ना, सब ऐसे। लेकिन ये व्यक्ति क्या है, आराम से बांसुरी बजा रहा है और बाजू में से गर्लफ्रेंड खड़ी हुई है कि नहीं। तो उसने बोला, अगर कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है तो यही हो सकता है। तो उसका एक निष्कर्ष था ये जो है कि, तो ऐसे जो है भगवान श्री, उसका लॉजिक था जर्मन व्यक्ति का, उसके भौतिक अंडरस्टैंडिंग के अनुसार कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुष हैं। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि उनकी जो शक्ति, नतस्य कार्यम करणम च विद्यते, कि भगवान के, ये भगवान के पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है, कुछ भी कार्य नहीं करते। ही इज ओन सुप्रीम एंजॉयर, केवल एंजॉय करते हैं। नतस समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते, भगवान के समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। परास्त शक्ति विविधई वस्तु होता है, हालांकि भगवान स्वयं कुछ नहीं करते हैं लेकिन सब कुछ वैसे होता है जैसे वे इच्छा करते हैं, उनके इच्छा मात्र सब कुछ हो जाता है। तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुमार इच्छा या विश्व सृजन संहार। तो भगवान स्वयं कुछ मेहनत नहीं करते लेकिन वे सिर्फ इच्छा करते हैं, और परास्त शक्ति भगवान की जो अनंत शक्तियां हैं वे सब कार्यों को भगवान के इच्छा अनुसार शेप देती हैं, पूर्ण करती हैं। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाच, और भगवान की जो शक्तियां हैं वो इस प्रकार से कार्य करती हैं, ऐसा लगता है कि वे ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब जैसे सूर्य है, ऋतुएं चेंज हो रही हैं, सूर्य प्रकट होता है, सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है, अस्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा कहीं पे बिजली का कंट्रोल बॉक्स है जहां पे यू नो सन का बटन ऑन किया, शाम को सन का बटन ऑफ किया, फिर चंद्रमा का बटन ऑन किया, चंद्रमा का बटन ऑफ किया. ऐसा कहीं नहीं होता. हमें तो लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बटन लगाने पड़ते हैं, सब कनेक्शन लगाना पड़ता है. लेकिन भगवान की शक्तियां इतनी परफेक्ट हैं कि वे सब ऑटोमेटिकली कार्य करती हैं. लेकिन उनके पीछे हैं भगवान, लेकिन भगवान इतने एक्सपर्टली मैनेज करते हैं सब चीजों को कि दिखाई नहीं पड़ते कि इसके पीछे भगवान का हाथ है. इसलिए लोग जो है प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं कि प्रकृति सब कुछ करने वाली है. कि आप देखिए, एक बीज बोएंगे तो कैसे इतना बड़ा पेड़ उग जाता है, पेड़ पर इतने बड़े फल निकल आते हैं, फल के अंदर और इतने सारे बीज निकल आते हैं. लेकिन कभी किसी को देखें कि भगवान या कोई भी व्यक्ति आ रहा है, पेड़ की एक एक टहनी को वहां पर कील ठोके लगा रहा है, उसके ऊपर फल चिपका रहा है, उसके ऊपर पत्तियां लगा रहा है, ऐसा हम नहीं देखते हैं, है कि नहीं? कहां एक बीज बोया उससे इतना बड़ा विशाल वृक्ष. आपने क्या डाला? सिर्फ पानी, सूर्य की रोशनी भगवान से आपको मिल रही थी और स्वाभाविकली वो पेड़ ग्रो हो गया. कोई देखेगा चमत्कार है, किसी बच्चे को दिखाया जाए तो क्या बोलेगा? चमत्कार ही है ना, कि अगर नहीं. तो इस प्रकार से भगवान की सब शक्तियां जो हैं कार्य करती हैं. तो ऐसे भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अनेक तरीके से उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है. लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि वे अनेक नामों से पुकारी जाती हैं, अनेक अनेक कार्य करती हैं, जैसे योग माया और महामाया, किंतु वास्तविकता भगवान की एक ही शक्ति है. जैसे, और उदाहरण प्रभुपाद जी किसका दे रहे हैं? बिजली का. तो बिजली जिस प्रकार से उसे इलेक्ट्रिसिटी के एक स्विच के अंदर यदि आप पानी गर्म करने केटल लगा देंगे, गीजर लगा देंगे, हीटर लगा देंगे, तो क्या होगा? वह गर्मी प्रोड्यूस करेगा, उष्मा प्रोड्यूस करेगा. और वहीं पर ही आप एसी या कूलर लगा देंगे तो क्या होगा? ठंडक प्रोड्यूस करेगा, है ना? तो शक्ति तो बिजली गर्म नहीं है, बिजली ठंडी नहीं है, लेकिन वह अलग अलग यंत्रों के साथ अलग अलग कार्य करने में सक्षम है, जिससे वह अलग अलग नतीजे परिणाम आपको दे सकती है. उसी प्रकार से जो भगवान की शक्ति है आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत में कार्य करती है. तो जो है क्या कार्य करती है वे? भौतिक जगत में क्या कार्य करती है? वे बद्ध जीवों को मोहित करती है, भगवान से और दूर लेकर के जाती है, उनको जो है इस जगत में बांधे रखती है. और आध्यात्मिक जगत में क्या कार्य करती है वही शक्ति? वह भगवान की ओर लेके जाती है, भगवान के पास जो भक्तों का प्रेम है वह और बढ़ाती है, और भगवान की लीलाओं को संपन्न करने के लिए अनेक अनेक कार्य करती है. तो इस प्रकार से जो है दोनों जगत के अंदर कार्य करती है, इसीलिए उसका नाम दिया भगवती, कि वह लगभग भगवान के ही समान है. और हमारे सिद्धांत में भी शक्ति और शक्तिमान दोनों की पूजा एक साथ की जाती है ना? क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं है. इसके बाद में तो यहाँ पे इसमें श्रील प्रभुपाद जी जो है उदाहरण दे रहे हैं कि योग माया और महामाया कैसे कार्य करती है. तो इसका उदाहरण देने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो असुर लोग हैं, कंस, साल्व इत्यादि, उन पे कौन कार्य करता है? महामाया कार्य करती है, उन्हें और मोहित करती है. जबकि यशोदा, देवकी और भगवान के अन्य संबंधों के साथ कौन कार्य करता है? योग माया कार्य करती है. लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा सा अलग तात्पर्य देते हैं और इसको और मतलब ब्रॉड तरीके से विस्तारित करते हुए समझाते हैं. वे कहते हैं कि देखिए, जो देवकी की पुत्री पैदा हुई थी, सॉरी, देवकी के गर्भ से जिन्होंने बलराम जी को ट्रांसफर किया, शंकरसेन जी को ट्रांसफर किया यशोदा के गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में, देवकी के गर्भ से, वो कौन थी? महामाया थी, योग माया थी. क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक कार्य के है, महामाया में वह शक्ति नहीं है कि वे बलराम जी को, शंकरसेन जी को स्पर्श कर सके, है ना? तो इसलिए वह कार्य किया योग माया ने. जो यशोदा की पुत्री पैदा हुई वो योग माया महामाया है? वो भी योग माया है ना? लेकिन जब वसुदेव जी उन्हें लेकर के आते हैं और कंस उन्हें मारने के लिए उठाता है और जब वो आकाश में चल जाते हैं, वे कौन है? वो महामाया है. क्यों? क्योंकि कंस जैसे पापी असुर योग माया को स्पर्श कभी नहीं कर सकते, है ना? उसके लिए जब व्यक्ति पवित्र होगा, महात्मा होगा, वही महात्मानस्तु माम पार्थ दैवम प्रकृति माश्रित, कोई भी दुरात्मा व्यक्ति योग माया के वशीभूत नहीं होता. तो वही शक्ति है, लेकिन जब असुरों पर डील करना होता है तो वो कौन है? महामाया का रूप धारण कर लेती है. जिस प्रकार बिजली के साथ आपने गर्म यंत्र लगाया, गर्मी प्रोड्यूस करने वाला, तो वह हीटर गर्मी प्रोड्यूस करेगा, और कूलर लगाया तो ठंडा करेगा। तो उसी प्रकार से जो योग माया जो अभक्त हैं असुर हैं उन पे कभी उन पे वह शक्ति महामाया के रूप में कार्य करती है, जो भक्त लोग हैं उनपे महामाया उनपे योग माया के रूप में अट्रैक्ट करती है। अब जो कृष्णाचार्य ठाकुर आगे बताते हैं कि जब रासलीला के प्रारंभ के श्लोक के अंदर ही बताया योग माया उपाश्रिता कि जो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों ने रासलीला की वह किसके वशीभूत है, योग माया महामाया, योग माया है कि नहीं, क्योंकि कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में तो महामाया का कोई कार्य ही नहीं है। और लेकिन जो उन गोपियों के पति थे या उनके घर रिश्तेदार वगैरह थे वे सब योग माया के वशीभूत थे या महामाया के, योग माया के वशीभूत थे, वे सब महामाया के वशीभूत नहीं थे। क्यों? क्योंकि यदि वे महामाया के वशीभूत होते तो क्या होता, वे भगवान से द्वेष करते, भगवान से ईर्ष्या करते, भगवान के प्रति शत्रुता होती उनकी, लेकिन ऐसा नहीं था। हम देखते हैं उनके अंदर इस प्रकार का भाव कदाचित नहीं था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, क्योंकि वे सब भगवान की योग माया के वशीभूत थे। जब महामाया के वशीभूत होता है तो व्यक्ति भगवान के अगेंस्ट होता है, वह स्वयं भगवान बनना चाहता है और भगवान के अस्तित्व का नकारता है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तन्माश्रितं परम भावम् अजानन्तो मम भूतम् महेश्वरम् या नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नाधमा माया प्रीत ज्ञान आसुरीं भावम् आश्रिताः। कि चार प्रकार के मूढ़ लोग हैं कृष्ण कहते हैं जो उनकी शरण कभी ग्रहण नहीं करते, तो ये महामाया के वशीभूत लोग भगवान के अगेंस्ट होते हैं, स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। जैसे कि वो चार हाथ लगा के एक आया था ना असुर पौंड्रक, तो अब वो योग माया के वशीभूत है ना महामाया के वशीभूत है, वो महामाया के वशीभूत है। लेकिन जो भगवान के ग्वाल बाल सका है जो कई बोलते हैं कृष्ण तुम हार जाओगे कल, अगर आज गेम छोड़ के भाग गए तो कल तुम्हें नहीं खिलाएंगे, वे योग माया के वशीभूत हैं या वह महामाया के वशीभूत हैं, वह योग माया के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये जो गोपियों के पति हैं ये सब योग माया के द्वारा प्रभावित हैं, उसके द्वारा जो है आवृत हैं। और दुर्योधन शाल्व इत्यादि जो लोग भगवान को एक मायावी व्यक्ति मानते हैं, यदु मानते या एक यादव मानते हैं इत्यादि इत्यादि, वे सब क्या हैं, वे महामाया के वशीभूत हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब यशोदा माता कृष्ण के अंदर विश्व रूप देखती हैं, उनके ऐश्वर्य को देखती है, नंद महाराज जब वरुण पाश से बंध जाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार वरुण देव भी कृष्ण की इतनी उपासना कर रहे हैं, तो वह कार्य योग लेकिन उसके बाद भी नंद और यशोदा कृष्ण के ऐश्वर्य को देखते हैं लेकिन फिर भी क्या मानते हैं कि भगवान के वे भगवान उनके पुत्र ही हैं, कृष्ण उनके पुत्र हैं, लाला हैं, तो वह योग माया का कार्य महामाया का कार्य है। विष्णु ठाकुर कहते हैं ना वो योग माया का कार्य ना वो महामाया का कार्य है, वो कहते हैं यह तो कृष्ण प्रेम का लक्षण है। वो उससे ऊपर जाते हैं कि यह तो क्योंकि जो ऐसे एसोसिएट्स हैं वो तो भगवान के ऐश्वर्य को देख के भी मोहित नहीं हुए, वे तो भगवान से ही प्रेम करते हैं, तो ये सब कार्य किसका है, ना तो योग माया का ना महामाया का है। ऑफकोर्स एग्जोटरिक एक्सप्लेनेशन है, वह जो भगवान का जो प्रेम है उनके हृदय के अंदर वह प्रेम उनके उस ज्ञान को भी आच्छादित कर देता है। दिस प्रेमा कवर्स अप नॉलेज ऑफ द लॉर्ड्स पावर एंड विद द रोप्स ऑफ स्पिरिचुअल पॉजिटिवनेस बाइंड्स अप कृष्णा इन देयर हार्ट्स मोर एंड मोर। With this increase in affection for the Lord, prema drowns the devotees completely in the great ocean of relishing the sweetness of Krishna. So, इस प्रकार से जो है, so this is all the Yashoda saw Krishna's Vishwarup and Nanda saw Krishna and Varuna Loka, but because of their extreme affection, though they saw reverential aspect of the Lord, they were completely unaffected by it. This is neither the action of Yoga Maya nor Maya. It is the nature of prema itself. तो वो ये कह रहे हैं कि वहां पे तो उनके साथ तो जो विचित्र कार्य है कि भगवान के वे अपने पुत्र रूप के पे जो उनका स्नेह है वो उनके ऐश्वर्य को देखने के बाद भी जरा भी कवर नहीं होता, तो वह क्या है, वह भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है, जो अहेतु की प्रेम है। ऑफकोर्स साधारण भाषा में हम उसे बोलते हैं समझने के लिए, तो निश्चित रूप से वह योग माया है, ऐसा कहना भी गलत नहीं है कि नहीं नहीं उन पर योग माया का एक्शन नहीं है। लेकिन फिर चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि नहीं, वह वास्तविकता में प्रेम का ऐसा मोर क्लासिफिकेशन करने के लिए। इसके बाद ये जो माया है यह क्या कार्य करती है, प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं कि भौतिक जगत के अंदर जो महामाया है वह लोगों को अलग अलग उपाधियों के साथ में बांध देती है। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भारतीय तो अमरीकी, या मैं भारत के अंदर भी है तो कोई बोलेगा मैं पंजाबी हूँ, कोई बोलेगा मैं हरियाणवी हूँ, कोई बोलेगा बिहारी हूँ, कोई बोलेगा मराठी हूँ, कोई बोलेगा गुजराती हूँ, कन्नड़ हूँ, मलयालम हूँ, तमिल हूँ, तो ऐसे ऐसे जो है व्यक्ति को बांट देता है, जो है अलग अलग प्रकार से विभाजित कर देता है, है कि नहीं। तो यह सब देहात्म बुद्धि है। यया सम्मोहितम जीवम आत्मानम त्रिगुणात्मक आत्मानम त्रिगुणात्मकम, कि जब श्री व्यासदेव जी समाधि में जाते हैं भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते मले, तो वे अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया तदपाश्रयम, कि वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अपने पास देखते हैं और उनके बाजू में किसको देखते हैं, भगवान की माया को देखते हैं। आचार्यगण और प्रभुपाद दोनों बताते हैं कि वह माया कौन है, महामाया है भगवान की, जो भगवान के पीछे ही खड़ी है, है ना, और भगवान के साथ ही है, और अंतरंग शक्ति भगवान के साथ है, लेकिन उसको सेपरेटली नहीं बताया गया है कि अंतरंग शक्ति क्यों, क्यों, क्योंकि जैसे अगर कोई बोला जाए कि चंद्रमा है आसमान में, इसका मतलब क्या है कि जो चंद्रमा की जो रोशनी है, जो चांदनी है, वो उसके साथ ही है। तो इसीलिए जहां पे भगवान है वहां भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो तो स्वाभाविक उनके साथ ही है हमेशा, भगवान कभी अकेले नहीं रहते, शक्तिमान कभी अकेले नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकली व्यासदेव जी ने तो देखा वो क्या है, महामाया है। और उन्होंने साथ साथ किसको देखा, जीवात्माओं को भी देखा, कि जो भगवान से को भूलने के कारण क्या है, यया सम्मोहितम जीवम आत्मानम त्रिगुणात्मकम, वे भगवान से विमुख होने के कारण क्या है, इस बहिरंगा शक्ति की ओर आकर्षित हैं। और यह शक्ति कैसी है, आत्मानम त्रिगुणात्मकम, ये तीनों गुणों, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और इन तीनों गुणों से व्यक्ति क्या है, आच्छादित रहता है, मोहित हो जाता है, अपने आप को पदार्थ से आइडेंटिफाई करने लगता है और वही अपनी पहचान करने लगता है और भूल जाता है कि मैं क्या हूं, भगवान का नित्य दास हूं। और यह जो बहिरंगा शक्ति है उसके इस कर्ता भाव को, उसके इस मोह को और अधिक वर्धन करती है, उसमें बढ़ोतरी करती है। और कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते, कि हालांकि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ करने वाले हैं, जीव के पास तो केवल इच्छा शक्ति है, लेकिन मोहवश व्यक्ति को लगता है कि नहीं, सब कुछ करने वाला जो सुप्रीम डूअर है वो कौन है, मैं ही हूं, है ना। तो इसीलिए जो है इस प्रकार से बद्ध जीव को माया जो है और अधिक बांधते रहती है, उसके मोह को बढ़ाते रहती है। तब इच्छा मते माया तब इच्छा मते जीवेर जन्म मराना स्मृति संस्मृति निपात दुख सुख संघटाना। इसे एक पहले, तब इच्छा मते शिव करे न संहार तब इच्छा मते माया सृजे कारागार, कि जो है भगवान की इच्छा से माया देवी क्या करती है, इस भौतिक जगत रूपी कारागार की रचना करती है। जिस प्रकार से सरकार है किसी भी राज्य की या देश की सरकार, वो क्या करती है, एक तरफ उसके पास पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए है, लेकिन साथ साथ कैदियों के लिए क्या है, ऐसे लोग जो नियम तोड़ेंगे उनके लिए क्या है, एक प्रिजन डिपार्टमेंट भी, एक प्रिजन मिनिस्ट्री भी है, जहां पे सरकार ही खर्चा करती है, सरकार ही देखरेख करती है, लेकिन उसका क्या अभिप्राय है कि वह जो दुष्ट लोग हैं वे समाज से, समाज को प्रदूषित ना करें दुष्टता करने के लिए। तो ऐसे ही जो ये माया देवी हैं बद्ध जीवों को, जो कि भगवान से विद्रोह करते हैं, उनको यहाँ जेल में डाल देती है और उनको भुलाए रखती है कि नहीं, कि वे कृष्ण के पास ना जाएं। ये माया देवी का एक थैंकलेस जॉब है, हालांकि वे स्वयं भगवान की सेविका हैं, यू नो, भगवान उनके प्रभु हैं, लेकिन फिर भी ये भगवान की इच्छा से ही यह जो एक थैंकलेस बहुत ही टफ टास्क जो है वे करते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी के दौरान जब क्राउड करके सेवा करनी होती है, तो ये एक बहुत ही थैंकलेस टास्क है, क्योंकि सब लोग तो भगवान के पास जा रहे हैं और आपको उनको भगवान के पास जाने से रोकना पड़ता है कि नहीं, कि नहीं नहीं लाइन में जाइए, रेगुलेट होके जाइए, बाद में जाइए। तो वैसे देखा जाए तो अपराध है, कोई भगवान के पास जा रहा है तो उसको रोकना तो ठीक नहीं है, ठीक है गलत है अगर वैसे एक दिशा देखा जाए, लेकिन उन भक्तों को, ताकि सबको कृपा प्राप्त हो सके, एक सिस्टम बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, उन्हें ये एक थैंकलेस टास्क करना पड़ता है। और अब जिसको भी रोकते हैं उसे क्या होता है, तुरंत महामाया का प्रभाव दिखाई पड़ता है कि नहीं, अब जिसको भी रेगुलेट करते हैं तुरंत ही वहां से आपको आक्रोश प्राप्त होता है। है कि नहीं? अब इसे क्राउड केयर वाले कैसे भी देख सकते हैं, देखो भगवान के पास सेवा करने का क्या परिणाम है, और दूसरा दोस्त योग माया का प्रभाव होगा तो व्यक्ति देख सकता है कि नहीं ये मेरे शुद्धिकरण का मार्ग है। कैसे भी करके तो जो है, तो ऐसे ही ये जो माया देवी है ये भौतिक जगत के अंदर इस प्रकार का एक थैंकलेस टास्क करती है और सभी बद्ध जीवों को मोहित करके रखते हैं इस प्रकार से। वही जो योग माया है आध्यात्मिक जगत के अंदर भगवान के जो भक्त हैं उनका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए बारंबार ऐसे आयोजन करती है, ऐसे अरेंजमेंट करती है जिससे भगवान जो भक्त लोग हैं वे भगवान के प्रति क्या हो सकें, और अधिक आकर्षित हो सकें, और अधिक उनका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ सके, और अधिक उनका स्नेह प्रगाढ़ हो सके। तो बारंबार इस प्रकार से योग माया देवी जो है कार्य करती हैं, अनेक इस प्रकार के आयोजन करेंगी कि सब लोग जो हैं भगवान से, और भगवान से वैसे ही आकर्षित हैं लेकिन उनका आकर्षण क्या होते जाएगा और अधिक बढ़ते जाएगा। इस प्रकार की सब व्यवस्था करेंगी जो है गोलोक वृंदावन के अंदर या अन्य सब जगह पर इस प्रकार से कि भगवान के जितने भी भक्त हैं वे सब भगवान से और अधिक आकर्षित हो सकें, है ना। और भगवान भी इसी प्रकार की लीला करेंगे कि जो है वे भक्त लोग उनसे आकर्षित हो सके, भगवान स्वयं भी भूल जाएंगे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के जो है खड़ाऊ अपने सर पे उठा करके लेकर के आ रहे हैं, और इससे क्या होता है नंद महाराज का आकर्षण और भगवान के प्रति बढ़ता है क्योंकि वे एकदम बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। मेरे को एग्जैक्ट लीलाएं तो याद नहीं आ रहे हैं कि किस प्रकार से योग माया जो है वृंदावन के वासियों के ऊपर एक्ट करती हैं कि वे सब कुछ जो है भूल जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ब्रह्मा जी की जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है तो परीक्षित महाराज वहां प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी से कि अघासुर का वध आज दोपहर के अंदर हुआ लेकिन ब्रज में कब चर्चा होती है इस विषय में, 1 साल बाद ये चर्चा होती है कि कृष्ण ने आज ही अघासुर को मारा है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी 1 मिनट बताइए जरा ऐसा क्या कारण हुआ कि आज मारा और 1 साल बाद चर्चा हो रही है। तो फिर ब्रह्म विमोहन लीला का पूरा व्याख्यान होता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान की महामाया से मोहित होते हैं या योग माया से मोहित होते हैं, योग माया से मोहित होते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं लेकिन भगवान के सुप्रीमेसी को थोड़े से मोहित हो जाते हैं, तो इसीलिए भगवान की शक्ति। लेकिन क्या होता है जैसे ही अपनी गलती रियलाइज करते हैं वे भगवान के शरणागत हो जाते हैं, उनका भगवान से द्वेष नहीं है, सिर्फ एक भगवान को टेस्ट करने की उत्सुकता है बेसिकली, है ना। और जो ग्वाल बाल हैं वे भी सब योग माया के ही वशीभूत हैं, और 1 साल बाद जब आते हैं उन्हें तो पता ही नहीं लगता कि हम तो सो रहे थे, वैसे ब्रह्मा जी हमारा हरण करके ले गए थे, उन्हें तो पता ही नहीं होता, उन्हें लगता है आज ही कन्हैया ने जो है अघासुर का वध किया है, है कि नहीं, आज ही ये सब लीला हुई हमारे साथ, वो इतने फ्रेश थे। तो ये सब योग माया के वशीभूत सब इस प्रकार से लीलाएं होती हैं अनेकों अनेक, जिससे उस लीला का जो फ्लेवर है जो रस है वो अधिकाधिक और अधिक बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है और बढ़ते रहता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। अब हमारे व्यावहारिक जीवन, अब हम देखते हैं हमारे शास्त्रों के अंदर अनेकों अनेकों उदाहरण हैं ऐसे लोगों के भी जो कि महामाया के पूर्णतया वशीभूत हैं, जैसे कि पौंड्रक दुर्योधन इत्यादि सामने सामने भगवान की लीला दिख रही लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं शास्त्रों के अंदर जहां पे अपेरेंटली वो भक्त महामाया के वशीभूत हो सकता है या इस भौतिक जगत में हो सकता है लेकिन उसके जितने भी कष्ट उसको प्राप्त होते हैं उसके अंदर वह योग माया का हाथ देख पाता है, और हाथ ही नहीं देख पाता वह इस प्रकार से एक्ट करता है कि उसके ऊपर भगवान की योग माया का प्रभाव हो, महामाया का प्रभाव ना हो, लेकिन अनेक उदाहरण है ऐसे हमारे शास्त्रों के अंदर, जैसे कि महात्मा विदुर। तो विदुर जी को दुर्योधन इतना अपमान करता है कि आप जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, आप हमेशा पांडवों के पक्ष के अंदर हो, दासी पुत्र हो, अनेक अनेक अपशब्द बोलते हैं, और बोलता है कि हस्तिनापुर से आप एक ही चीज अपनी लेके जा सकते हो साथ में, वह क्या है, अपने प्राण, अन्यथा यहां रहेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, मतलब और कुछ नहीं है, अपना घर बार अस्त्र शस्त्र सब यहां छोड़ दीजिए, पद इत्यादि, और हस्तिनापुर से बाहर निकल जाइए। उनके भतीजे हैं दुर्योधन, धृतराष्ट्र के सामने इतना अपमान किया लेकिन धृतराष्ट्र ने रोका नहीं. तो विदुर जी समझ गए अभी हमें क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, अपना तलवार दरवाजे पे छोड़ करके और वहां से निकल जाते हैं. हृदय में एक बार बुरा तो अवश्य लगता है लेकिन वे समझ जाते हैं क्या कि ये भगवान की असीम कृपा हो गई, अगर अपमानित नहीं करता तो रिटायरमेंट मिलता नहीं, है कि नहीं. तो जिस कार्य के लिए वे यमराज के अंदर उनका इतना यमराज की पोजीशन में इतना क्या बोलते हैं हैवी ड्यूटी टास्क रहता है उनका, यहां भी आए तो हस्तिनापुर के अंदर जहां भगवान ने स्वयं पॉलिटिक्स किया वहां पे आके उनको पूरा सीट ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर एक महामंत्री का पद संभाल रखे हैं और उसके यहां देख रहे हैं कि भगवान के अन्याय हो रहा है और अभी युद्ध होने वाला है. तो बोला बहुत कृपा हो गई, यू नो, एक तो युद्ध नहीं देखना पड़ेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी क्या है, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, किसी का वध होगा तो मुझे दुख तो होगा ही होगा, ना युद्ध करना पड़ेगा ना युद्ध के समाचार सुनने पड़ेंगे, और सबसे बढ़िया क्या हो गया, आराम से तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं. और तीर्थ यात्रा में जाकर किसका संग करते हैं, भाई मैत्रेय मुनि का संग करते हैं विदुर जी. लेकिन अनेक अनेक जो है तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, ऐसा बताया गया विदुर जी के बारे में उनका कपड़ा कभी सूखता ही नहीं था क्योंकि वह एक तीर्थ स्थल में जाते थे स्नान करते थे और फिर अगले तीर्थ स्थल पर जाते थे, तब तक जब तक ये कपड़ा सूखता था दोबारा कुंड आ गया उसमें दोबारा स्नान करते थे फिर आगे निकल जाते थे. तो सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया, हस्तिनापुर के मंत्री के रूप में तो कभी नहीं कर पाते, है कि नहीं. तो उन्होंने योग माया के रूप, जब प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट प्राप्त हुआ हिरण्यकशिपु ने दिया, प्रहलाद महाराज ने क्या देखा, कभी नहीं देखा कि भाई ये हिरण्यकशिपु इतना आतताई है. नरसिंह भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं बाद के अंदर, यदि आप मेरे से प्रसन्न है तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए, क्योंकि कम से कम मुझे प्रेम तो करते थे. वो क्या देख रहे हैं, नरसिंह पुराण में बताया गया है कि जब उनको जहर पिलाया गया तो क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरा मामा जी हैं, क्यों, समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी आई, समुद्र मंथन से हलाल विष आया, तो लक्ष्मी के बड़े भाई हो गए ना, विष विष तो पहले आया, तो वो तो ऐसे देख रहे हैं. जब सांपों के बीच में डाला उन्हें तो वो क्या देख रहे हैं, मेरे प्रभु की शैया है ये तो. तो ये उनका जो है दृष्टिकोण है जिसके द्वारा जो सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति, क्या है पहला श्लोक, स्थावर जंगम देखी ना देखी तारा मूर्ति, सर्वत्र होए निज देव इष्ट देव स्फूर्ति, कि ऐसे जो योग माए वशीभूत होते हैं वे हमेशा प्रकृति के कार्यों के पीछे एक और चीज देख पाते हैं. वो क्या है, उनके प्रति कुछ गलत भी हो रहा होगा या सही भी हो रहा होगा, जो भगवान के भक्त होते हैं वह क्या देख पाते हैं, जो भगवान शरणागत हैं, इन दोनों के पीछे है कौन, करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, जो मेरे बेनिफिट के लिए माया को यूज कर रहे हैं बेसिकली, और माया को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं ताकि मैं उनके पास आ सकूं. यह एक जो भक्त का, एक शरणागत भक्त का जो दृष्टिकोण होता है, जितना अधिक वह भगवान से कनेक्टेड होता है वह हर इंस्टेंस के अंदर जो है भगवान के उस डायरेक्ट हाथ को देख पाता है. जब हम अभक्त होते हैं तो हमें केवल माया के एक्ट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक भक्त जो कनेक्टेड है वह उस माया के एक्ट के पीछे करने वाले, उस कठपुतली के धागों के पीछे नचाने वाले जो पपेटियर है, कठपुतली जो पकड़ने वाले हैं, उन भगवान को देख पाता है प्रत्येक स्थिति के अंदर, कि भगवान की उन लोगों को लेकर के क्या योजना है, इस स्थिति में भगवान उनको क्या सिखाना चाहते हैं. जैसे कि चित्रकेतु महाराज, भगवान संकर्षण का दर्शन करके आए और यहाँ पे क्या हुआ, उनको तुरंत श्राप मिल गया माता पार्वती के द्वारा ही, उन्हीं महामाया के द्वारा, मतलब परसोनिफाइड महामाया ने श्राप दे दिया कि क्या, तुरंत असुर बन जाओ. अब चाहते तो चित्रकेतु महाराज रिवोल्ट भी कर सकते थे लेकिन किया नहीं उन्होंने, शाप को नलिफाई भी करना चाहते तो कर सकते थे लेकिन हाथ जोड़ के और माता को प्रणाम करके स्वीकार कर लिया और चले गए. और शिवजी उनका गुणगान करते हैं, कहते हैं नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नर्गेश अपितुल्यार्थ दर्शिनः, कि जो नारायण के भक्त हैं वे क्या हैं, न कुतश्चन बिभ्यति, उन्हें कोई डर नहीं लगता, स्वर्ग में हो चाहे वैकुंठ जगत में हो चाहे नरकों के अंदर हो, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय, अपितुल्यार्थ दर्शिनः, उनके लिए वे समदर्शी हैं, तो इन्होंने इसलिए स्वीकार कर लिया. लेकिन चित्रकेतु महाराज जब वृत्रासुर बने वो क्या देख रहे हैं, कि देखिए भगवान की मेरे ऊपर क्या कृपा थी, कृपा है. जब चित्रकेतु था तो हजार करोड़ों साल तक मुझे रहना पड़ता और क्या होता, तब जाके भगवान के लोग जाता. असुर बन गया तो क्या होगा, बस देवासुर संग्राम होगा, लड़ाई होगी, मर जाऊंगा उसके अंदर, मैं तुरंत भगवान के धाम चले जाऊंगा, है कि नहीं. तो इसीलिए वह भगवान के प्रति और अधिक ग्रेटफुल फील कर रहे थे कि मेरे प्रभु मेरे ऊपर कितने अधिक दयालु हैं, इसलिए उनके क्या प्रार्थना करते हैं, अजात कक्षा एवं अजात पक्ष एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वस्त तरा शुद्धार्था प्रियम प्रिय विषनम विषन्ना मनोरविंदाक्ष विरही आकांक्षा ऐसे करके कि मैं उन भगवान के पास जिस प्रकार से पक्षी के बच्चे अपनी माता का वेट कर रहे होते हैं, जिस प्रकार से गाय का बछड़ा अपने गाय का दूध पीने स्तनपान करने के लिए उत्सुक होता है, जिस प्रकार एक पत्नी जिसका पति किसी दूर देश में गया, विदेश में गया है और उसका वो इंतजार करती है, उसी प्रकार से मैं अपने प्रभु से मिलने का क्या करता हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो वे तो उस वो नहीं ब्लेम कर रहे कि देखो कहाँ श्राप मिल गया, शंकर दर्शन करके आया था। तो उनका जो दृष्टिकोण था उस स्थिति के अंदर कैसे वह योग माया के वशीभूत हो पाए। तो इसलिए हम साधक ऐसे अनेक और उदाहरण भी है शास्त्रों के अंदर। एक उदाहरण है प्रताप रुद्र महाराज का, जो मैं अंत में प्रैक्टिकल एक्सप्लीकेशन के साथ में कि किस प्रकार हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी देखिए, एक तो है असुर या अभक्त नास्तिक जो महामाया के अंदर ही है और वहीं पर वो खुश है, इग्नोरेंस के अंदर खुश है, तमो अज्ञानता के अंदर। एक तरह है परमहंस जो भगवान के योग माया के वशीभूत हैं और वो विशुद्ध सत्व में खुश हैं। बीच में फंस जाते हैं हम लोग साधक भक्त, है कि नहीं, जिनके लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति हो जाती है कई बारी कि ना तो योग माया में पूर्णतया ना महामाया के बीच में, तो पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर, और जो है ना भौतिक जगत को भोग पाते हैं ना आध्यात्मिक का पूर्णतः रिलीज प्राप्त हो रहा है। तो बीच के अंदर जब अटक जाते हैं स्थिति थोड़ी सी असमंजस वाली हो जाती है, डाउट्स आने लगते हैं। तो जो है खासकर जब कुछ विपरीत परिस्थितियां होती हैं हमारे जीवन के अंदर, कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं जो मन और इंद्रियों के लिए हमारे पास में क्या बोलते हैं के लिए फेवरेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर में जो हमको शास्त्रों के आदेश अनुसार हमें प्रयास क्या करना चाहिए, एक लिमिट तक उस परिस्थिति को काउंट्रैक्ट करना चाहिए, एक लिमिट तक। उसके आगे क्या करना चाहिए, भगवान के प्रति शरणागति को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल भगवान ही उस परिस्थिति को जानते हैं। उस परिस्थिति से मैं मेरा क्या फायदा है, उस परिस्थिति में अन्यों का क्या फायदा है। यदि हम बारंबार उस स्थिति को प्रतिकार करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, उस वर्लपूल के अंदर और बंधते जाएंगे। जितना अधिक हम नहले पे दहला, दहले पे 11, 11 पे 12 करने का प्रयास करेंगे या स्थिति को सुधारने का प्रयास भी करेंगे, भौतिक जगत का जो 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 बनावट है इसी प्रकार से है कि यहाँ आप समस्या का समाधान करने जाएंगे वो समस्या और मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो इसीलिए हमें समस्या का प्रतिकार करना अवश्य चाहिए कुछ हद तक। जब सर्दी आई है तो अब आप ये नहीं कह सकते कृष्ण ने बोला सहन करो, सहन करने का मतलब ये नहीं है कि अब आपसे धोती कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, इसका मतलब ये प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं, गर्म कपड़े डालिए जो स्वाभाविक है वो हमें करना पड़ेगा। लेकिन अब हरे कृष्णा की जगह हाय गर्मी, हाय सर्दी करते रहें तो उसका तो कुछ हमारे वश में नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है दरवाजा बंद कर ले सब करके आगे क्या करना है, कृष्ण कथा में और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान की शरणागति ही बढ़ानी चाहिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि अब मौसम ठीक होगा तब मंगल आरती जाएंगे, नहीं, अब हमें देखना चाहिए कि ये मेरे लिए और टफ स्थिति है जहां भगवान के प्रति मैं शरणागति दिखा सकता हूँ कि सर्दी में रजाई में जो सुख है शायद गोलोक वृंदावन में भी ना हो, कई बार ऐसा हमको लग सकता है कि नहीं। तो सुबह सुबह उठना एक बहुत बड़ा तपस्या हो सकती है सर्दी के अंदर, लेकिन भक्त क्या देखता है कि नहीं ये तो और अच्छा विपरीत परिस्थिति के अंदर मेरे पास और अच्छा मौका है कि मैं कैसे भगवान की शरणागति को बढ़ाऊं। तो ऐसे ही शारीरिक हो चाहे मानसिक रूप से हो, जो है हमें उन परिस्थितियों के अंदर भगवान के प्रति अपनी शरणागति को बढ़ाना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, ऐसे उदाहरण पढ़ने चाहिए शास्त्रों के अंदर जो हमारे होराइजन को, जो हमारी सोच को संकुचित करने की बजाय उसको और विस्तारित कर सके, उस परिस्थिति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से डील करने का हमें दृष्टिकोण दे सके, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति दे सके, तो क्या होगा, वी आर स्टेपिंग टूवर्ड्स योग माया। और यदि हम अपने उन तीनों गुणों के प्रभाव से स्थिति का प्रतिकार करने का प्रयास करते रहेंगे तो क्या होगा, हम और महामाया के वशीभूत होकर तमोगुण के प्रभाव में पड़ते जाएंगे। और इसका एक उदाहरण है, लेकिन ये करना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है करना आसान नहीं है। तो है इसके लिए उदाहरण आता है महाराज प्रताप रुद्र का, बहुत लंबी कहानी है प्रताप रुद्र महाराज की, लेकिन एक प्रसंग उसमें से मैं बताता हूँ। प्रताप रुद्र महाराज राजा थे, महान वैष्णव थे, इतने भक्तों की उन्होंने वैष्णवों की सेवा की, चैतन्य महाप्रभु की इतनी सेवा की, लेकिन महाप्रभु उनसे मिलने को तैयार नहीं, उनको दर्शन देने को तैयार नहीं। और राजा ने नित्यानंद प्रभु के द्वारा, सार्वम भट्टाचार्य के द्वारा, रामानंद राय के द्वारा, हरेक के द्वारा प्रार्थना कराया। महाप्रभु ने बोला अगली बार बोलने को, अगर आपने बोला मुझे राजा से मिलो तो क्या करूंगा, मैं पूरी छोड़ के चले जाऊंगा। तो ऐसे बहुत समय निकल गया, लेकिन सार्वम भट्टाचार्य ने जब इतना उत्साह इतना निश्चय प्रताप रुद्र के अंदर देखा तो उन्हें पहले ही बोल दिया कि रथ यात्रा के दिन आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी और उनको पूरा टेक्निक बता दिया क्या करना है। लेकिन होता क्या है, अब उस रथ यात्रा के दिन राजा पूरा झाड़ू निकालते हैं उस क्या बोलते हैं सड़क पर, तो महाप्रभु देखते हैं और मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि सात कीर्तन पार्टी होती है जगन्नाथ के रथ के पास में और वहां पे बहुत ही जो है जोर शोर से कीर्तन होता है और फिर हर कीर्तन में नृत्य करने के लिए क्या होते हैं, श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं एक्सपैंड करते हैं अपने आप को और सातों संकीर्तन टोलियों के अंदर होते हैं। और यह दृश्य कुछ ही लोगों को दिखाई पड़ता था बस, तो एक जगन्नाथ जी को दिखाई पड़ रहा है ना, और कुछ गिने चुने भक्तों को, लेकिन किसको ये दृश्य के दर्शन हो रहे थे, प्रताप रुद्र महाराज को, कि सातों संकीर्तन टोलियों के अंदर वो है। तो यहां पे उनको पहला टोकन ऑफ मर्सी मिलता है। इसके आगे क्या होता है कि वे खड़े होकर महाप्रभु के उद्दंड नृत्य को देख रहे होते हैं और ऐसे प्रेमे नाचे गाए का लोक करे कोलाहल, प्रभुर नृत्य देखी सबे आनंद विभल, अन्य रे की काय जगन्नाथ हल धर, प्रभुर नृत्य देखी सुखे चलीला मंथर। कि सब लोग महाप्रभु के उस संकीर्तन देख के दिव्य आनंद से अभिभूत हो जाते हैं, औरों की तो क्या बात करें, जगन्नाथ और हलधर बलराम जी भी मोहित हो जाते हैं उनके नृत्य को देख के, तो धीरे धीरे चल रहे होते हैं है ना, तो और कभी कभी रथ को रोक देते जगन्नाथ और बलराम जी और केवल महाप्रभु के नृत्य को देखते हैं। तो इस प्रकार से हो रहा था, एई मत प्रभु नृत्य करिते भ्रमिते, प्रताप रुद्रेर आगे लागिला पाड़िते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु खूब नृत्य करते 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 घूमते हुए क्या करते हैं, प्रताप रुद्र के सामने आके गिरने लगते हैं। तो जैसे ही गिरने पड़ते हैं, संभ्रमे प्रताप रुद्र प्रभु के धरिला, तहां के देखिते प्रभुर बाह्य ज्ञान हैला। तो तुरंत महाप्रभु को बड़े सम्मान से वे उठा लेते हैं। अब जैसे उठाए तो क्या हुआ, महाप्रभु बाह्य चेतना में जाते हैं। राजा देखी महाप्रभु करे न धिक्कार, छी छी विषय स्पर्श हैला अमार। और वो देखते हैं कि राजा ने तो बोलते हैं आय हाय छी छी, कितने दुख की बात है कि मुझे एक विषय व्यक्ति का स्पर्श हुआ। आप सोचिए प्रताप रुद्र पे क्या गुजरी होगी, उन्होंने सही किया गलत किया, खुश थे दुखी थे, कह रहे कि मैंने ऐसा महाप्रभु की प्रतिक्रिया को देख के वह बहुत ही जो है महाप्रभु इस प्रकार से प्रतिक्रिया की। और जब गिरे तो ना वह नित्यानंद प्रभु थे, ना काशीश्वर पंडित थे, ना गोविंद थे, और क्यों, क्योंकि सभी नित्य में इतने सभी जो है उद्मत्त तो हो चुके थे। तो अब क्या हुआ, यहाँ प्रताप रुद्र बहुत चैलेंज डिफिकल्टी के अंदर आ गए कि भाई कंफ्यूज हो गए कि क्या करना चाहिए। लेकिन वहां पे उनके साथ में कौन थे, सार्वभौम भट्टाचार्य। प्रभुर वचन राजार मने हैला भया, सार्वभौम कहे तुमी ना कर संशय, तुम्हार उपरे प्रभुर सुप्रसन्न मन, तोमा लक्ष्य करी शिखाये न निज गण। तो अवसर जानी आमी करीब निवेदन, सही काल जाए करी प्रभुर मिलन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला आप चिंता मत करो, आपसे महाप्रभु बहुत प्रसन्न है और किस प्रकार आपको लक्ष्य बनाकर अपने निजी संगियों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि विषयी व्यक्तियों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। और उन्होंने बोला उपयुक्त अवसर पाके मैं आपका निवेदन प्रस्तुत करूंगा, तब महाप्रभु से आपके लिए मिलना आसान हो जाएगा। सो द पॉइंट हियर इज डिवोटीज गिव द टीचिंग कि जब कभी हमारे जीवन के अंदर भक्तिमय जीवन के अंदर हताशा आए, निराशा आए, डाउट्स आए, कन्फ्यूजन आए, तो हमें भक्तों का सहारे की आवश्यकता है, आध्यात्मिक गुरु के सहारे की मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि उस समय स्थिति को कैसे योग माया के प्रभाव किससे डील किया जाए, ना कि महामाया के प्रभाव से। एकाकी आमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने। अर्थात कि हम अपने प्रभाव से महामाया, अपनी शक्ति से महामाया के प्रभाव से योग माया के प्रभाव में नहीं जा सकते, इसके लिए तो हमें उन भक्तों के सहारे की, उन भक्तों के मार्गदर्शन की, उन भक्तों की कृपा की आवश्यकता है जो योग माया के संरक्षण के अंदर है, है ना, अकेले हमारे बस की नहीं है। और वही भक्तों का सहारा, जिस प्रकार महाराज प्रताप रुद्र, हालांकि महाप्रभु कृपा है लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना मन, इतना भय हो रहा है ना, तो ऐसे भक्तों की आवश्यकता। इसी लीला के दौरान एक और होता है, प्रताप रुद्र खड़े होते हैं, उनका सेवक हरिचंदन खड़ा होता है, आगे श्रीवास ठाकुर खड़े होते हैं, तो प्रताप रुद्र जिधर देख रहे होते हैं तो श्रीवास ठाकुर बारम्बार जो है दृष्टि ऑब्स्ट्रक्ट हो रही होती है उन्हें, कि भाई राधा को देखने में डिस्टर्ब हो रहा था, बार बार ही कंधे पे हाथ लगाते, थोड़ा बाजू हटो थोड़ा बाजू हटो। तो दो चार पांच बारी जब ऐसा हो गया तो श्रीवास ठाकुर को बहुत जो है पलटे वो सीधा, और उन्होंने क्या किया, एक जो है झापड़ मारा हरिचंदन को। तो हरिचंदन को बहुत गुस्सा आया, एक तो राजा का सेवक हूं और तुम मेरे को ऐसा जो है थप्पड़ लगा दिया। तो जो है प्रताप रुद्र महाराज रोकते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, भाग्यवान तुम्हें हस्तेर स्पर्श पाइला, है कि नहीं, कि आप भाग्य अपना इंसल्ट मत समझो, इसे अपमान मत समझो, ये तो आपका सौभाग्य था कि उनके हाथ का इस प्रकार स्पर्श आपको प्राप्त हुआ जो है। तो ऐसे के अंदर हमारी प्रतिज्ञा कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब भक्त हमारे साथ हो तो बोले नहीं आप पे विशेष कृपा हुई है कि नहीं। श्रीवास ठाकुर, अब हम तो शिवानंद सेन नहीं है नित्यानंद को लात मारे और हम डांस करें कि हाँ ब्रह्मा जी और शिव जी की को भी जो चरण प्राप्त नहीं है वो हमको प्राप्त हुए हैं, लेकिन जब ऐसी प्रतिक्रिया हो तो हमें ऐसे भक्तों के सहारे की आवश्यकता है जहां पे हम महामाया की जगह योग माया में ट्रांसेंड कर सकें। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल।